के ज्ञान में निर्भर ब्रह्मान महान हैं पिछले हमारे ध्यान। फिर संसार परमागम है और इसका चारित्र के संबंध में जो कथन है वो चरणान योग सूचक चूल्ह का नाम दिया है, उसमें है विस्तार से। लेकिन ये तो प्रारंभ से ही चारित्र की बात करता है ना। लेकिन क्या करें हमारे दुर्भाग्य से कि जिसे वो चारित्र कहते हैं लोग उसे चारित्र मानते ही नहीं हैं। वो कहते हैं शुद्धोप योग ही चारित्र है, वही समता भाव है, वही मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम है। और उस शुद्धोपयोग अधिकार से ही उनने ये बात आरंभ की है। भले छोटा सा अधिकार है, सिर्फ 8 गाथाओं का, उसमें भी उनने शुद्धोपयोग किसे कहते हैं, उसका क्या स्वरूप है, शुद्धोपयोग प्राप्त करने के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए, इसकी कोई चर्चा नहीं की। सीधी ये बात कही कि शुद्धोपयोग के फल में आपको क्या मिलेगा, तो उनका अनंत सुख मिलेगा और अनंत ज्ञान मिलेगा। यद्यपि जब इन शास्त्रों में इनकी चर्चा आती है तो ज्ञानानंद स्वभावी हैं ऐसा बोलते हैं, यानी ज्ञान को एक नंबर देते हैं और सुख को दूसरा नंबर देते हैं, ज्ञान और आनंद ऐसा ही बोलते हैं। लेकिन इस शुद्धोपयोग अधिकार में पहले उनने सुख का वर्णन किया और फिर बाद में ज्ञान का वर्णन किया। 13वीं गाथा में 12वीं गाथा खत्म हुई और 13वीं गाथा से शुरू होता है शुद्धोपयोग अधिकार और 20वीं पे खत्म हो जाता है। अपन ने कल पहली गाथा से लेके और 20वीं गाथा का तक का सारांश सबको बताया था। अब इस शुद्धोपयोग अधिकार के संदर्भ में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि वो पहली गाथा में सुख की बात करते हैं। छड़ाला में जे त्रुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भय बन, ये नहीं कहा कि कोई केवल ज्ञानी बनना चाहता है, सो अनंत सुख चाहते हैं। और इसमें भी मामला पलट दिया, वो ज्ञान की बात नहीं करके सुख की बात करते हैं। यद्यपि जब अधिकारों का वर्गीकरण करेंगे तब ज्ञानाधिकार पहले रखेंगे और सुखाधिकार उसके बाद में रखेंगे, लेकिन शुद्धोपयोग अधिकार में सुख की बात पहले कहती हैं। क्योंकि हरेक जगत के प्राणियों में ये जो भाव बना हुआ है कि भाई हम ये जो करेंगे इससे हमें मिले क्या। मैं 3 दिन से बराबर चर्चा देख रहा हूं, चाहे वो प्रवचन हो, सुमित जी के हों और किसी के भी हों, और चाहे और अपनी मीटिंग्स हों, सब में एक ही बात आ रही है कि मिलेगा क्या। कोई उसे बोलता है इनका भविष्य क्या है, कोई कुछ नाम देता है, अच्छे अच्छे नाम हमने रख लिए हैं, लेकिन सीधी सच्ची बात यह है कि मिलेगा क्या, तुम तो ये बता दें कितने का पैकेज, ये वो, कोई नाम कुछ भी दो। आचार्य कुंद देव भी ये बात जानते थे कि इन्हें ये बताए बिना कि मिलेगा क्या, जे हमारी तरफ देखने वाला भी नहीं है। तो उन्होंने कहा अनंत अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी। अनंत अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति होगी, इन दो बातें बताई उन्होंने। और यद्यपि कहा ऐसा कि तुम सर्वज्ञ बन जाओगे, स्वयंभू बन जाओगे, स्वयं अनंत ज्ञान प्राप्त करोगे और फिर अनंत सुख कहा, लेकिन फिर भी जब समझाने की बात आई तो सुख की बात करने लग गए कि तुम्हें वो सुख प्राप्त होगा और वो कैसा होगा। ये बता रहे, तो उस बताने में बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा, कैसा आएगा वो नहीं बताते। तो जो जो ये आज तक हमको जिनको सुख है ना, उन सुख में जो जो डिफेक्ट हैं, मन सुखी होकर के भी दुखी है, सुखी होकर के भी दुखी हैं, उन पॉइंट्स को उन्होंने क्लियर किया कि सपरम बाधा संयम है ना, ये चीजें हैं कि ये जो सुख है इस वो कैसा है, संसार का सुख है सपरम, अंत आ जाएगा, उसका अनंत नहीं है। जो मिलेगा उसके पहले छूटने की तारीख न की है। आप 5 साल के लिए प्रधानमंत्री चुनेंगे कि एमएलए चुनेंगे, तो 5 साल का आगे बताओ ना, कौन चुनेंगे, तो हम काम नहीं करेंगे तो कल ही हटा देना ना, कल ही हटा देना, नहीं नहीं नहीं, और 5 साल के बाद तो हम हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप हट जाओगे। सत्रह माने उसकी अंतिम डेट उस पर लिखी हुई है, कोई भी चीज बनती है तो उसमें एक्सपायरी डेट लिखी होती है। जितने भी सुख जगत के हैं जिन्हें आप सुख कहते हो, उसमें लगा ना रत्नगढ़ साहब का दान में कि जितने ये पद हैं ये पाकर छोड़ने पड़ते हैं। कौन? देवेंद्र चक्रम अभियान ममे मान, राजेंद्र चक्रम विनींद सिरोच नियम, धर्मेंद्र चक्रम अधरी कृत सर्वलोकम लब्ध्वा। बस लब्धा पर लग जा पाकर, कहते हैं अमे महिमानम देवेंद्र चक्रम, देवेंद्र का जो चक्र है उसकी महिमा का कोई ठिकाना नहीं है। अमेय माने मेय माने नापने योग्य, और अमेय माने जिसको नापा नहीं जा सके। अमेय मानम महिमानम देवेंद्र चक्रम, देवेंद्र चक्र कैसा है, जिसकी महिमा का नाप संभव नहीं है, अमाप है महिमा जिसकी। और राजेंद्र चक्र अवनींद्र सरोच नियम, 32,000 मुकुट बुद्ध राजा जिसके चरणों में नमस्कार करते हैं। मैंने चक्रवर्ती की बात है, 32,000 मुकुट बुद्ध राजा उनके चरणों में झुकते हैं। तो अवनींद्र चक्र समझे ना, वो है चक्रवर्ती का चक्र अपने। और धर्मेंद्र चक्र मधुरी कृत सर्वलोकम, और एक धर्म चक्र भी है जिसने अधरी कृत सर्वलोकम, सारी दुनिया को नीचा कर दिया है, माने उससे बड़ा कोई नहीं है। अधरी कृत समझ गए ना, उससे नीचे नीचे हैं सब, नीचे नीचे। सर्वलोकम अधरी कृतम धर्मेंद्र चक्रम, लेकिन लब्ध्वा मैंने इन्हें पाकर, मैंने बात खत्म नहीं होती है, छोड़ना पड़ता है, अनंत काल तक नहीं रह सकते। हमें तो जज गया चक्रवर्ती पद में, जज गया, अब कोई बात नहीं, मेरा अनंत काल तक हम रहें, क्यों होता हो गए थे। सिद्ध चक्रम, अब एक और चक्र है जिसका नाम है सिद्ध चक्र। ये सिद्ध चक्र है कि ये पाकर फिर छोड़ना नहीं पड़ता, अनंत काल तक वो कायम रहता है। इस बात के लिए तो आचार्य ने एक गाथा की गाथा पूरी लिखी कि हे भगवान, आपने ऐसा भंग किया माने नाश किया कि जिसके बाद वो उत्पन्न ही नहीं होगा, और ऐसा उत्पाद किया कि जो कभी नष्ट ही नहीं होगा। भंग विहीनो ही भवो संभव परिभज्य दो विनाशो ही, ये उन्हें कहा कि तुम्हारा सुख कैसा है कि जो कभी अंत नहीं आएगा जिसका, ऐसा सुख इस शुद्धोपयोग के फल में मिलेगा। लेकिन शुद्धोपयोग क्या है ये तो बताओ ना। शुद्धोपयोग अधिकार है सिर्फ 8 गाथाओं का है और तुम सुख के गीत गाने लग गए। पहले अधिकार में सुख कैसा है और जो जिनको वो सुख होता है वो कैसे होते हैं, दूसरी गाथा
क्या।
लेकिन वो कैसा होता है वो बातें नहीं करते, खड़ी थी ना बनने है क्या है? फिर ज्ञान कैसा है, उसके धारण करने वाले कैसे हैं, ये बता रहे हैं। तो उस शुद्धोपयोग के फल में जो मिलेगा उसमें बता रहे हैं कि ये मिलेगा और कुछ नहीं, पर खत्म है ना। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं ज्ञान और आनंद के स्वभाव वाला हूं, और तुम्हारा जो स्वभाव है और अनादिकाल से पर्याय में प्रकट नहीं है, इसे हम ये कहते हैं कि वो हमें उपलब्ध नहीं है। है तो लेकिन वो है वाला क्या काम, जब तक वो हमें प्राप्त नहीं है जब तक क्या काम। तो वो कहते हैं कि वो तो हमारा स्वभाव है, हम ज्ञानानंद स्वभावी हैं। यदि सिद्धांत की बात होती तो वहां ज्ञानानंद नहीं बोलते, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम बोलते। मनोहर लाल जी बरनी यदि आत्मा का गीत लिखेंगे तो वे लिखेंगे कि ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, और सोनगढ़ वाले यदि अध्यात्म का गीत लिखेंगे तो वे लिखेंगे मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? वो फर्स्ट और थर्ड तो है ही, लेकिन वो सिद्धांत में आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञान दर्शन आत्मा का लक्षण है, आनंद लक्षण नहीं है। उन्हें वस्तु का स्वरूप का निर्णय कराना है, परिभाषा देनी है, और अन्य मत वालों के सामने भी बात प्रस्तुत करनी है, वो सब बात का ध्यान रखना है उनको है? ज्ञान दर्शन उपयोग है, उपयोग लक्षणम जीव का, और वो सत्य दुविध अष्ट चतुर भेदा है ना, दो भेद वाला है ज्ञान और दर्शन, एक के 8 भेद हैं, एक के 4 भेद हैं। वो तत्वार्षी की शैली है, अजय समय सार की शैली है। देखो आ गया ना, कहाँ है समय सार की, मैंने प्रवचन साल में ही आ गया ना, ज्ञान और आनंद, ज्ञान और आनंद, ज्ञान और आनंद। अपने अंदर कहां से वो प्रवेश कर जाता है अपन को पता नहीं चलता है। वो आगम में है, परमागम में है, लेकिन वो उसी से हमारे में आया है, लेकिन हमको ये पता नहीं कहां से आया है, क्योंकि हमको पूज्य गुरुदेव के मुख से सुना और किसी महापुरुष के मुख से सुना, तो हमको हमें पास तो वहां से आया ना, तो उसका मूल स्रोत कहां है वो हमें पता नहीं होता। वो कहता है क्या करना दृष्टा, वो तो ज्ञान में ही शामिल हो गया, वो तो चेतना है ना, चेतना लक्षणो जीवा। तो चेतना के 2 भेद हैं, एक ज्ञान चेतना एक दर्शन चेतना। ज्ञान दर्शन वो बात आएगी और यहां पर आएगी ज्ञान और आनंद की बात। तो इस दुरुपयोग अधिकार में मेरा उपयोग बार बार इधर अटकता है कि हम तो ये सोचते हैं कि हमें शुद्धोपयोग का स्वरूप मिल जाए, तो ये सारा जो झगड़ा है कि खात्मे में होता है कितने में होता है, उस स्वरूप में से कुछ निकलेगा ना। 8 गाथाएं ज्यादा होती थी जिस शुद्धोपयोग से तुझे ऐसा अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त होगा और वो अनंत काल तक रहेगा। उसका नाम मानो अतीन्द्रिय रखा, क्यों रखा, क्योंकि ये जो हमारा जो सुख आज तक है और जिसके पीछे हम भागे फिर रहे हैं वो सब इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है, भोगा जाता है और इंद्रियों के विषय रूप है। ये रुपया पैसे की कीमत इस जगत में हो गई ना, तो ऐसे रुपए पैसे में ऐसा क्या है, ये नोट है ना, इसमें क्या है, उसके गाय के सामने डालोगे तो सूंघेगे कि नहीं, और थोड़ी घास डाल दो जो सबसे तुच्छ पदार्थ माना जाता है तो प्रेम से खा जाएगी, फिर इसकी इतनी कीमत क्यों हो गई। तो उसका एक ही उत्तर है, और वो क्या है कि इससे पांच इंद्रियों की भोग सामग्री प्राप्त होती है। इसमें हमने कृत्रिम तरीके से ऐसी शक्ति डाल दी है कि हर चीज मिलेगी पैसे से, तुम्हारे हीरे जवाहरात से मिलेगी हर चीजें जरूरी नहीं है, हैं? तुम किसी गांव में चले जाओ और कहो मुझे नाश्ता करना है, एक कप चाय पीना है, और जे मेरे पास हीरे की अंगूठी है, क्यों तुम ले ले, हैं? दे दोगे, और वो ले लेगा और तुम्हें चाय मिल जाएगी। वो कहे पैसा हो जेब में तो बात करो, वो कागज का टुकड़ा दोगे तो वो तुम्हें चाय मिल जाएगी। पांच इंद्रियों की भोग सामग्री सब जगह से उपलब्ध कराने की शक्ति उसमें है, सब जगह चलता है। हीरा हीरा है तो मुझे बंबई में, न्यूयॉर्क में, शिकागो में, ऐसी जगह ही बेच सकते हो, किसी गांव में नहीं बेच सकते। सोने की कीमत हीमा हीरे से ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो हर जगह बिक सकता है और हर जगह मिल सकता है, हमारे पास है और हमें उसका उपयोग करना है, तो वो कहीं भी ज्यादा कीमत इसलिए है उसकी कीमत बना भाव नहीं, उपलब्धता की दृष्टि से। और ये पैसा, इसकी कीमत बिल्कुल कृत्रिम है, लेकिन फिर भी हर जगह भोगों की उपलब्धि के लिए, और वे भोग क्या है कि पांच इंद्रियों के विषय देख लो, या तो स्पर्श के रूप में, ठंडी ठंडक चाहिए, गर्म चाहिए, नरम गद्दा चाहिए, हैं बढ़िया कमरा चाहिए सोने के लिए, हैं स्पर्श इंद्री का हो गया, रसना इंद्री के बढ़िया खाना पीना स्वादिष्ट बढ़िया से बढ़िया चाहिए तो रसना इंद्री का भोग हो गया, ऐसा एकदम सुगंधित वातावरण होना, बदबू नहीं होना तो निगरान इंद्री का विषय हो गया, और बढ़िया बढ़िया ऐसे दृश्य हो कि देखते ही तबीयत खुश हो जाए वो चक्षु इंद्री का हो गया, और बिल्कुल बहुत सुंदर कंठ से अच्छी आवाज में हम गाना सुनने को मिले तो कर्णेन्द्री का हो गया, और विकल्पों का ढेर खड़ा हो तो मन का हो गया। तो पांच इंद्रियों और मन के विषय जो हैं, इनसे उत्पन्न हुआ है वो तुम्हारा जगत का सुख है, इसलिए उसे बोलते इंद्रियज, और उसके विरुद्ध इस सुख को नाम अतीन्द्रिय दिया। माने मेरे कहने का मतलब कि ये बात समझने समझाने के लिए इंद्रियों का कितना महत्व है, क्योंकि जो हमारा असली सुख है जिसकी इंद्रियां शत्रु हैं समझ लो, उसको नाम भी उसी की वजह से हमें देना पड़ा, उसका नाम हमने अतीन्द्रिय रखा। गुरुदेव श्री फरमाते थे कि ये आत्मा परिणामी है, क्यों तो नहीं नहीं नहीं, पर्याय जुदी है और भगवान आत्मा जुदा है, पर्याय के आश्रय से धर्म नहीं होता है, पर्याय क्षणिक है, मैं तो अनादि अनंत हूं, मैं क्षणिक का आश्रय कैसे ले सकता हूं, ख्याल में आई ना? तो नहीं नहीं मैं पर्याय नहीं, मैं परिणामी नहीं हूं। तो कैसे हो बोलो, मैं क्या परिणामी हूं? तो कहते नहीं अपरिणामी भी नहीं, ये क्या कह रहे हो? तो फिर क्या है, हो कुछ के नहीं? कहते हैं परिणामी शब्द भी परिणाम की अपेक्षा से द्रव का नाम रखा गया है ना, है स्वयं परिणामशील, तो परिणामी नाम द्रव का, वस्तु का काय की तरफ से रखा गया, पर्याय की तरफ से, और अपरिणामी नाम भी पर्याय की तरफ से रखा गया, उस पर्याय का निषेध भी। तो पर्याय तो मुख रही, द्रव्य तो मुख हुआ ही नहीं, क्या ना परिणामी है और न अपरिणामी है, तो ऐसा अर्थ गुरुदेव श्री के अलावा और कौन निकाले इस जगत में। अभी भी तुम तो कहते निकाले श्री कृष्ण जी, अभी लोगों को पच नहीं रहा, पचता नहीं है, रुचता नहीं है, स्वीकृत नहीं होता है। कितना स्पष्ट है ये बात कि भैया तुम भूले तो उसे हो ही नहीं उस परिणाम को। हमने कहा हटाओ परिणाम पे से दृष्टि, तो तुम्हारे कहां हटी? अपरिणामी के नाम से वहां भी परिणाम बोल रहा है। देखो आप लिखो पत्रिका में छापो कि हमारे यहां फला फला पधारेंगे, और वहीं से आप कि फला फला नहीं आएंगे, उनको निमंत्रित नहीं किया गया है। छापो साथ में, क्यों क्यों नहीं छापते? आप छापते हो ऐसा तो कह उसका नाम तो छपेगा ना, हमें उसका नाम तो छापना पड़ेगा ना। हिंदू धर्म में नहीं आता है कि प्रहलाद का पिता था हिरण कश्यप और वो राम का कट्टर विरोधी था, वो नहीं चाहता था कि उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति राम का नाम लेवा हो। नाम भी राम का लेने वाला नहीं मिलना चाहिए, और उसी का बेटा राम का भगत था। क्या कह, ये बड़े बड़े सम्राटों की यही हालत है। वो अकबर है तो अकबर का बेटा कैसा है, कितना सुख है अकबर की संतान का। आप देखो राम का नाम नहीं लेना वो मानता नहीं था, तो उनने एक वो बुलाया हंटर, और हंटर से उसकी पिटाई करी और बोला अब लेगा राम का नाम, तो कहा हां लूंगा। फिर दूसरा हंटर, अब लेगा हां लूंगा। तब वो कहता है पहला एक बार और एक हंटर और मार, क्यों कम से कम मना करने के लिए ही सही, तुम जैसे राम विरोधी के मुख से राम का नाम तो निकल रहा, ये कहने के लिए कि अब लेगा राम का नाम, मैं भी बोल रहा हूं और तू भी बोल रहा है। इसलिए हम कह रहे हमारे गुरुदेव जी कान्जी स्वामी का युग है, क्यों कि अभी हम भी कान्जी स्वामी के गीत गाते हैं और विरोधी भी उन्हीं की चर्चा करते हैं। हमारे अखबार भी कान्जी स्वामी से भरे पड़े हैं और विरोधियों के अखबार भी कान्जी स्वामी से ही भरे पड़े हैं। पंडित कैलाश चंद जी ने लिखा था कि ये कान्जी युग है, क्यों क्योंकि युग का पुरुष उसे कहते हैं कि जिसकी चर्चा विरोधी भी करें। तो इस अर्थ में आज कान्जी स्वामी कुछ अखबार कान्जी स्वामी के पक्ष में लिखते हैं और कुछ विरोध में लिखते हैं, कुछ पक्ष में बोलते हैं कुछ विरोध में बोलते हैं। देखो वहां मत जाना, वो कान्जी स्वामी वालों का है, कान्जी वालों का है। ये यहां कहां है कान्जी, क्यों कहां है, कौन है, हमारे तो होते ही नहीं। ये वहां मत जाना, वहां मत जाना, ऐसा कह कह के गांव गांव में जाकर कहते हैं। सच्ची घटना बताता हूं मैं आपको, सोनगढ़ में पंच कल्याणक था भगवान महावीर के निर्वाण वर्ष में, ये जो परमागम मंदिर बना है इसका, और सारे देश में आग लग रही थी और गुजरात में सबसे ज्यादा है। तो ये कि क्या करें क्या करें, ऐसे में कैसे पंच कल्याणक होगा, लेकिन किया। वहां आकर के पंडित विद्वत परिषद का अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष पंडित फूलचंद जी थे, उस सभा के मुख्य अतिथि जगन मोहन लाल जी, कैलाश चंद जी थे, और मैं उस मीटिंग को कंडक्ट कर रहा था। तो कैलाश चंद जी का जब नाम आया तो उन्होंने खड़े होकर बोला कि लोग कहते हैं कि निमित्त तो कुछ नहीं करता है, लेकिन सारे देश में आग लग रही है और यहां पर ये 25,000 आदमी आ गए हैं, तो ये आपके निमित्त से आए हैं कि नहीं है स्वामी जी से बोले, ये आपके निमित्त से आए हैं, आपके तो निमित्त नहीं मानते, अरे सबसे बड़े निमित्त तो आप हैं। ऐसा बड़ी सभा में बोला, मैं मीटिंग कंडक्ट कर रहा था, मैंने कहा कि ये सब यहां ये सुनने आए हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता, क्योंकि विरोधी विद्वानों ने गांव-गांव में जाकर ये बता दिया है कि वे निमित्त को नहीं मानते, है ना? वे निमित्त को नहीं मानते, तो ये जान की बाजी लगाकर ये देखने आए हैं कि हम उनके मुख से सुनना चाहते हैं कि वे निमित्त को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो सबसे बड़ा काम तो आप लोगों ने किया कि घर घर ये बात पहुंचा दी कि कांजी स्वामी क्या क्या नहीं मानते हैं, कि निमित्त को नहीं मानते हैं, पुण्य को मोक्ष का कारण नहीं मानते हैं, क्यों पर्याय को दृष्टि के विषय में शामिल नहीं करते हैं। रिसर्च कर करके तुमने एक एक गांव में बच्चे बच्चे को ये बात पहुंचा दी, अब हमारे लिए भी तो कुछ बचने दो, हम क्या पहुंचाएंगे? ये मैंने उस सभा में कहा था कि ये सुनने आए हैं कि कांजी स्वामी क्या कहते हैं, हम अपनी कान से सुन के आएंगे कि वास्तव में क्या है। तो वास्तव में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों दृष्टियों से जिनकी चर्चा करना वो उसी की चर्चा है। वो क्या कहते हैं, कुंद कुंद कहो चाहे अमृतचंद कहो चाहे पूज्य गुरुदेव श्री कहो, क्या कहते हैं कि एक पर्याय तेरे दिमाग में नहीं आनी चाहिए, तेरे विकल्प की सीमा से बाहर निकलना चाहिए, तेरे विकल्प में नहीं आना चाहिए। अब तुझे है कि नहीं है, है कि नहीं है, उससे आगे बढ़ता ही नहीं है। तुम अपने आत्मा की बात करना, उसकी बात करने की जरूरत क्या है, और बात ही की जरूरत नहीं है। वो तो कहते विकल्प भी अंदर में नहीं उठना चाहिए, इसका नाम सदुपयोग है। वो ये बताना चाहते हैं। अब हम तुमको सदुपयोग क्या समझाएं, हम तो ये कहते जब अनंत जब विकल्प से रह दशा हो गई ना, अत आनंद कोई सपरम बाधा संयम, वो जो नकली सुख की बात थी ना, वो बाधा सहित था, और ये कैसा सुख है, अव्याबाध। उस सुख को परिभाषित किया, और सुख को बेसुखी जो हैं वो कैसे हैं, तो इसको भी परिभाषित किया। अरहंत भगवान को भी अनंत सुख तो है, लेकिन एक कमी उनमें भी है। बोलो अंध्या, जो अरहंत भगवान की कमी निकाले वो कैसा होगा, वो कितना हिम्मत वाला होगा, है? वो कहते हैं उन्हें अनंत सुख तो है लेकिन अव्यवाद सुख नहीं है, क्योंकि वेदनी कर्म मौजूद है। अव्यवाद सुख नहीं है, जैसे अव्यवाद सुख सिद्धों पे है वैसा अव्यवाद सुख अनंत भगवान के नहीं है। ये अनंत भगवान में कमी नहीं निकाली, ये कमी है क्या नहीं है, नहीं तो नहीं थी तो फिर बदलने की जरूरत ही नहीं थी। यदि वो परिपूर्ण हो गए होते तो फिर उनको सिद्ध दशा की जरूरत ही नहीं थी, ध्यान में आई ना? तो अव्यवाद, तो कहते आत्मा का स्वभाव अव्यवाद सुख है, वो अतीन्द्रिय सुख है जो शुद्धोपयोग के फल में मिलेगा, वो अव्यवाद सुख है। क्या करें, कैसी विचित्र स्थिति है। अभी जो हर अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग में जाने की जिनकी नियम है, इसके बिना जो वो मुनि पद नहीं रहता, मुनि पद नहीं रहता जिसके बिना, ध्यान है ना, उसको वो कहते होता ही नहीं साधने के पहले। अब जो होता ही नहीं माने के बैठेगा वो उस दिशा में प्रयत्न कैसे करेगा, क्यों? ये बार बार चर्चा करना सही है, क्यों? कभी पांच पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, पंचम काल में मोक्ष नहीं करता, गुरुदेव तो यही फरमाते थे। अरे कैसे नहीं होता, मिथ्यात्व से मोक्ष होता कि नहीं, मोक्ष माने मुक्ति, तो मिथ्यात्व से मुक्ति मिलती है कि नहीं मिलती, सम्मदर्शन होता है कि नहीं होता है, और ये आत्मा तो सही मुक्त है, ये भगवान आत्मा तो मुक्त ही है, इसे क्या होना है, जो जिसे कुछ होना है वो मैं हूं ही नहीं। ये होना तो पर्याय का नाम है, होना तो परिणमन का नाम है, है? और मैं परिणामी द्रव्य हूं कि अपरिणामी द्रव्य हूं? कहते जिसमें परिणमन का और अपरिणमन का विकल्प भी नहीं है ऐसा निर्विकल्प तत्व मैं हूं, क्या बताएं? तो उन्नीस दो योग के फल में अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान और अनंत सुख की बात की। एक दूसरी बहुत मार्मिक बात जो इसमें आई है, जो हम 20 दिन से चला रहे हैं, इसे कितने दिन हो गए अपन को? ये वहां पिंड कल्याणक में चल रहा था ना, नागपुर में, और उसके बाद अपन ने यहां चलाया है, तो उसमें एक ही बात आ रही है कि वो अव्यवाद अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय ज्ञान की बात करते हैं। तो इसमें वो गाथा अपन ने पढ़ी थी, मैं सबको सुनाना चाहता हूं। 15वीं गाथा होगी, शुद्धोपयोगी जीव जग में घात घाती कर्मरज स्वयं ही सर्वज्ञ हो सब गेय को जानते, भी सब गेयों को जानते हैं, ऐसा शब्द पड़ा हुआ है। अब हम ये मानते हैं कि वो आत्मा पर को जानते ही नहीं है, ये आत्मा को जानते हैं ये नहीं लिखा, पर को जानते हैं ये नहीं लिखा, सब गेयों को जानते हैं। अभी अभी अपन ऊपर थे ना पूजा में, संजीव करा रहे थे, वो ज्ञान कल्याणक का प्रकरण चल रहा था, लास्ट लास्ट में जब मैं पहुंचा तो वहां क्या लिखा था उसने, भगवान मैं पंच कल्याणक में जाता हूं तो सबसे एक बात पूछता हूं केवल ज्ञान कल्याणक के दिन, किस दिन क्या बोलता हूं मुझे सब पता है। आज मैं आपसे पूछता हूं कि भगवान को क्या हुआ था, जैसे मैं बोलते ना भगवान को मोक्ष हुआ था इसलिए दिवाली मनाई जाती है, है मनाई जाती ना, तो आज क्या हुआ था, आज काय का फंक्शन है, अभी ये उत्सव काय का मनाया जा रहा है, क्या समझ ली, क्या समझ रहे? अभी अभी अंदर में घंटा बज गया, हाँ भगवान को केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया, वहां से चिल्ला दिए तो क्या हो गया बताओ तो मुझे, किसी मूल्य में आग लग गई, क्या हो गया, काय को चिल्ला रहे हो कि केवल ज्ञान हो गया? मैं हमारी हमें समझ में केवल ज्ञान तो था ही, केवल ज्ञान, सिर्फ ज्ञान तो था ही, लेकिन हुआ क्या है आज उनमें, नया क्या हुआ बोलो, क्या आत्मा को जाना उनने? आत्मा को तो जिस दिन सम्मा दर्शन हुआ था उसी दिन जान लिया था। बोलो पंडित जी श्री कृष्ण जी, क्या हुआ कि आज केवल ज्ञान हुआ है, केवल ज्ञान हुआ है माने आज उनने सारे जगत को जाना है, सबको जाना है, वे आज सर्वज्ञ हुए हैं, आज वे आत्मा के नहीं हुए। क्या हमें तो मना किया था कि सबके जानने के चक्कर में मत रहो, अकेले आत्मा को जाना कितना ठीक किया था, तुम अपनी बुद्धि पर को जानने में बर्बाद कर रहे थे, इसलिए तुमसे कहा था क्योंकि तुम्हारे पास बुद्धि बहुत कम है और आत्मा को जानना आत्मा के कल्याण के लिए ज्यादा जरूरी है, पर को जानना जरूरी नहीं है। जब हम मना करते तुम क्यों करते, क्यों कि वो जानना स्वभाव है, तुम स्वभाव मना करते हो इसलिए ये बात हम कहते हैं, हमको कोई जानने का रस थोड़ी है कि तुम जानो सारे जगत को, तुमसे अभी भी कहेंगे, लेकिन आज भगवान जब तुम सबको जानना बंद करोगे और अपने को जानोगे तो फल में क्या आएगा बोलो, वो तो शुद्धोपयोग है ना, शुद्धोपयोग की दशा यही है ना, निज माही निज में हेतु निज कर आपको आपे गहो, यही दशा है ना, क्यों क्या मिलेगा? सबको नहीं जानना ये धर्म है और जानना अपराध है, तो हमको सजा मिलेगी कि इनाम, कि हमारे ज्ञान में सारा लोकालोक झलक जाएगा। और बाजो सुविधा थी अभी तक कि हम इसे जाने और इसे नहीं जाने कहने के लिए, वो छिन गई। अब नहीं जान नहीं सकते, हम और आप ऐसा मुंह फेर सकते हैं। यहां गंदगी पड़ी हो तो हम ऐसा मुंह फेर सकते हैं कि उधर हम नहीं देखें। सुरेश जी, भगवान नहीं फेर सकते, उनके ज्ञान का यही वो बनेगा, उन्हें जानना अनिवार्य है, ऐसा उनका स्वभाव है। हमने तो सारी जिंदगी 8 वर्ष की उम्र से 80 वर्ष की उम्र तक ये पढ़ा, एक एक कदम पर। मैं अपने विद्यार्थियों को बताता हूँ, देखो इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, गाथा गाथा में ये बात आती है। और नमन वहां कैसे चल गया कहीं, कहीं वो नहीं जानते, नहीं जानना, नहीं जानते, नहीं जानना। एक दफे एक कह दिया तो इसका मतलब तुम यहां बैठो चुपचाप शांति से प्रवचन सुनो। कहीं दिशा में परीक्षा है, कल मुझे पढ़ाई पढ़ना है, कि पेपर है, 1 घंटे को छोड़ो, कोई पेपर नहीं है, सब बैठो शांति से सुनो। अच्छा आपने मना किया था कि मत पढ़ना, कोई पेपर नहीं है, हमें तो नहीं गया पेपर देने, परीक्षा देने। अब आप हमको जुर्माना करते हो कि तुमने परीक्षा में नहीं बैठे, ये नहीं कहते कैसे चलेगा, तुमने कहा था भरी सभा में कहा था, कैसे लाके बता दें कि कोई परीक्षा नहीं है, छोड़ो तुम पहले यहां ध्यान दे सुनो। अरे वो तो ऐसा उपदेश था, इसके फल में तो लोकालोक को जानना आने वाला है, और वो ऐसा कि उसे वे खुद ही नहीं रोक सकते। उनके ज्ञान में लोकालोक के स्वर्ग आए तो अनंत भगवान में ऐसी शक्ति नहीं है, उनका वीर गुण यहां काम नहीं करता कि उन्हें वो रोक दे। ऐसी तो है वीर गुण कि वो उन्हें जानने में सहयोग करे। अनंत वीर चाहिए अनंत ज्ञान के लिए, अनंत सुख के लिए। अनंत सुख भोगना हो तो अनंत वीर के बिना नहीं भोगा जा सकता, अनंत ज्ञान करना हो तो अनंत वीर के बिना नहीं किया जा सकता। ऐसा पूज्यपाद आचार्य ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में जो परिभाषाएं लिखी उनमें लिखा है। तो शुद्धोपयोग का फल वो सर्वज्ञता आनंद, अतीन्द्रिय आनंद है, वो हम सबको प्राप्त हो। अभी अपना बहुत कार्यक्रम शेष है, रथ यात्रा निकलनी है, और रथ यात्रा के बाद में अपन को कलशाभिषेक करना है। ये 2 बड़े काम अभी बहुत मौजूद हैं, और तीसरा उससे बड़ा काम भोजन करना है। तीनों की तैयारी चल रही है, सब बढ़िया एकदम। इसलिए यदि मैं अब ज्यादा टाइम लूंगा तो हर एक में बाधा खड़ी होगी, इसलिए मैं ज्यादा चर्चा इस वक्त नहीं करता।